بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دیکھو کل بات چل رہی تھی، وہی بخل کے بارے میں بات چل رہی ہے، بخل اور اس کا علاج. لیکن آج کا عنوان ہے سود لینے سے بخل بڑھتا ہے. سود لینے سے بخل بڑھتا ہے کیونکہ سود لینے کا سبب ہی بخل ہے. جتنا سود لیتا ہے بخل اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے تن پر بھی خرچ نہیں کر سکتا. جی، تو یہ بات چل رہی تھی کہ ہمیشہ، اس لیے آج دنیا سود پر چلی گئی ہے تو بخل بھی اتنا بڑھ گیا. آپ دیکھ لو اس وقت بخل بہت بڑھ گیا، اور پہلے زمانے میں یہ چیز تھی ہی نہیں، تو ان کے اندر سخاوت بہت تھی. اپنی محنت سے کماتے تھے، جو ملتا تو اس کے اندر سخاوت تھی. اور آج سارا کا سارا سود پر کام چل رہا ہے، بڑے بڑے بزنس چل رہے ہیں، تو اتنی ہی بخل بڑھ گئی. کسی کا مائک آن ہے؟ اپنا مائک بتا دو اس کو. تو اس میں مکسلر پر بھی دیکھ لینا آواز ٹھیک ہے. تو سمجھ میں آ گیا، کراچی میں ایک بہت بڑے سرمایہ دار ہے، اور پاکستان کے مشہور دو چار سرمایہ داروں میں سے ایک ہے، مالداروں میں سے ایک ہے. ارب پتی اور خرب پتی ہوں گے، یعنی ملین نے بلینر، اس کے بعد ٹریلیونل. ارب پتی اور خرب پتی ہوں گے. ایک دن وہ میرے پاس آئے. دیکھو، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پیسہ دیا ہے، آپ نے بہت سے کارخانے بنائے، فیکٹریاں لگائی، سب کچھ کر لیا، اب کچھ کام نفع کی خاطر نہیں، اب کچھ کام نفع کی خاطر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کر لو. دیکھو، اتنا بلینر، ٹریلینر، اب اس کے پاس کیا کمی؟ تو اب ایک بڑے عالم کے پاس جا کر، اور وہ ان کو سمجھا رہے کہ آپ کے پاس ابھی کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، تو آپ ایک کام کرو، کچھ ایسے کام جس میں نفع کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کچھ کر لو. تو وہ یہ کہ تم ایک ایسا بینک قائم کرو جو سود کے بغیر کام کرے. ایسی بینک بناؤ سود کے بغیر گا. کیوں؟ کہ بینک ظاہر بات ہے پبلک کا پیسہ لیتی ہے، اور پھر وہ اپنے بزنس میں لگاتی ہے، پھر اس میں سے جو آتا ہے وہ سود کے حساب سے پبلک کو دیتے، تو ظاہر بات ہے اور اسی پر خرچے پر ہی بینک کے سارا چلتا ہے کام. تو انہوں نے کہا تم ایسا بینک بناؤ جس میں کوئی تجارت اگر ہو بھی ہو تو جانے والوں کو کچھ بھی نہیں، ان کو کچھ بھی نفع نہیں رکھو، اور سب کا سب جو نفع بینک بنائی، اس بینک سے جو بھی تجارت ہوئی، اس تجارت میں جو بھی نفع ملا وہ سارا کا سارا پبلک کو دو، جو سود کے بغیر کام کرے. تمہارے پاس چونکہ پیسہ ہے اس لیے تم یہ کام کر سکتے ہو، اور واقعتاً ان کے پاس یہ کام کرنا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ انسان جب اللہ کے لیے کسی کو فائدہ پہنچاتا تو اللہ اس کے مال میں تو اور زیادہ برکت دیتے. تو یہ کام کر سکتے ہو، ورنہ آج کل تو دیکھو سب یہی ہے، سود وہ اس میں سے دیتے ہیں، لیکن سود اس لیے کہ حساب پورا نہیں، اس میں فکس کر دیا کہ تمہیں 1%، 2%، 3% ملے گا بس فیصد. تو اس لیے یہ شریعت نے حرام کیا، ورنہ اسی پیسوں سے ابھی 1000 آدمیوں کے اگر 1000 روپیز بھی جمع ہے تو کتنے لاکھ ہو گئے. दस लाख हो जाएंगे, 1,000 के 1 लाख, तो 100 आदमी के, तो ये हो गया। अब वो उससे भी तिजारत करते हैं, तिजारत करने के बाद इनको कितना दिया, जिन्होंने जमा कराया था उनको मिला 1%, यानी 1,000 पर 1 रुपया मिला, और उनको कितना मिला, बाकी 10% नफा हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, वो सारा उनके पास रहा। तो ये शरीयत ने मना कर दिया। शरीयत क्या कहती है, तुम जो कमा रहे उसका हिसाब दो, नफा कमी ज्यादती जो होती है उसी हिसाब से उनको नफा दो। तो जाहिर बात है आजकल कोई ऐसा करता नहीं, तो बैंक क्या है, वो हमारे पैसों से वो बड़े बड़े मालदार बन गए और हमें तो कुछ नहीं मिला। और जाहिर बात है इन्होंने निजाम ही ऐसा चलाया कि हर एक को पैसा बैंक में जमा करना आजकल तो लाजमी हो गया। तो ये क्या, ये हमारी सेविंग, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। हमारा पैसा इस्तेमाल करके उनके बिजनेस हो रहे हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बैंक नहीं है जो बाकायदा लोगों का पैसा लेकर तिजारत करके और उनको उसके नफे में पूरा पूरा शरीक करे, ऐसी बैंक नहीं, तो उसको लूटना कहते हैं। तो ये था, अब समझ में आ गया। इंशाल्लाह हम ऐसी खोलेंगे अभी कि जिसके अंदर पूरा पूरा नफा हिसाब किताब सब कुछ होगा। तो जो सूद के बगैर काम करे, तुम्हारे पास चूंकि पैसा है इसलिए तुम ये काम कर सकते हो। ये कौन है, या तो उसको कट कर दो, कट कर दो जी। जी किसका ऑन है, कैसे उसको कट करते हैं? चलो ठीक है, तो बस अब सुकून हो जाएगा। एक दो मरतबा तीन मरतबा कहने के बाद उसको कट ही कर देने का, क्योंकि फिर वो शायद सबक सुन नहीं रहोगे, छोड़ के चले गए। बहुत अच्छा किया। तो ये बात थी बैंक के बारे में। तो फरमाया तुम ऐसी बैंक खोलो जिसके अंदर कोई सूद ना हो, इसलिए तुम एक काम कर सकते हो। तो सूद किसको कहते, याद रखो, पूरा पूरा नफा न देना, नफा फिक्स कर देना। बैंक के अलावा भी आजकल हमारा लेने देने में भी सूद बहुत होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों से पैसा लेते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उनसे कहते हैं कि देखो तुम 1 लाख मुझे दोगे, 1 लाख पर तुम्हें 5,000 हर महीना दिया करूंगा। अब जो 5,000 फिक्स कर दिया है ये सूद हो जाएगा। तो फरमाया ऐसा नहीं है, बल्कि तुम मुझे 1 लाख दे रहे हो तो मैं जो बिजनेस करूंगा उसका हिसाब होगा, और उसके अंदर जो भी 30% इन्वेस्ट वालों का होगा, मेरा इतना परसेंट होगा, वो सारा बाकायदा होता है। उसके बाद फिर उनका हिसाब बताया जाता है जिसको देखना हो, और कभी उसमें 5,000 भी मिलता है, कभी 10,000 भी मिलता है, कभी 1,000 भी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, सब कुछ उसमें नफा नुकसान में शरीक। तो ये है असल बिजनेस का तरीका। लेकिन आजकल हर इंसान चाहता है कि मेरा नुकसान ना हो, इसलिए वो फिक्स कर देते भाई तुम्हें हर महीना। तो बैंक वालों ने फिक्स कर दिया, भाई हमारे पास रकम रखो, हम तुम्हें 1% 2% देंगे, और इतने महीने तक तुम 1 साल तक नहीं लोगे तो हम इतना, और 5 साल तक अगर तुमने जमा करा कर नहीं लिया तो इतना परसेंट हम देंगे। वो फिक्स है, इसलिए वो सूद हो गया कि लोगों के माल से उन्होंने अपना नफा कमाया और लोगों को गरीब के गरीब ही रखा। जी तो फरमाया फिर पैसा है इसलिए तुम ये काम कर सकते हो। कहने लगे मौलाना साहब, अब देखो उनका जवाब सुनो, वो बैंक फिर कैसे चलेगा। देखा मौलाना साहब, वो बैंक फिर कैसे चलेगा। तो फरमाया वो मौलाना साहब वो कहने लगे, यानी हजरत ने उनको बात बताई कि आप ऐसा बैंक खोलो ताकि लोगों का फायदा हो जाए। तो उन्होंने ये सोचने के बाद कहने लगे कि फिर वो बैंक कैसे चलेगा, यानी यूं कहते इनके पास गोया गरीब मिस्कीन आदमी है, तो मैं बैंक तो खोल दूं लेकिन बैंक के चलने के लिए खर्चा तो चाहिए, तो खर्चा कैसे निकलेगा अगर हम नहीं लेंगे तो सूद के बगैर। तो देखा इनका जवाब, हालांकि इतना पैसा है और वाकईतन क्यों कि जितना पैसा ज्यादा होता है इतना ही बुखल ज्यादा बढ़ता है। तो अब देखो इनके अंदर बुखल, क्या बैंक कैसे चलेगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह चलेगा, लेकिन तुम ये सोचकर कायम करो कि जो पैसा तुमने इस बैंक में लगा दिया वो गया, बस जब अल्लाह के फजल से तुम्हारे पास अरबों खरबों रुपया मौजूद है तो अगर इस बैंक के कयाम पर चंद करोड़ रुपया लगा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और चंद करोड़ रुपये लगाकर उनको भूल जाओ। कहने लगे मैं इनको फिर भूल जाओ, क्या कहने लगे, फिर मैं उनको भूल जाओ। मैंने कहा कि तुम तो भूल जाओ कि वो चंद करोड़ रुपए कहां गए, अल्लाह के पास चले गए। अल्बत्ता अल्लाह ताला चाहेंगे तो उसमें नफा भी अता फरमा देंगे, लेकिन तुम उसको भूल जाओ। बैंक को खोलने के लिए कुछ तो खर्चा होता है ना, बोले वो तुम लगा दो जितना करोड़ भी होता है, लेकिन अब वो तुम वसूल करने की फिक्र मत करो, बल्कि अपना बैंक चलाते जाओ और लोगों को उसमें जो तुम तिजारत करोगे उसमें अगर नफा मिला तो अल्लाह दे भी देंगे। वो आखिर में कहने लगे मौलाना साहब बात तो आप सही कहते हैं मगर हाथ की खुजली को मैं क्या करूं। बात तो सही कहते हैं लेकिन हाथ में खुजली है ना पैसा कमाने की, वो जाती नहीं है वो खुजली, तो इन्फेक्शन की खुजली तो किसी दवा से चली जाएगी लेकिन माल का इन्फेक्शन जो है तो वो तो जाएगी नहीं। तो बोले मैं उसको क्या करूं, इसलिए मुझे तो ऐसा तो नहीं कर सकता, मतलब वही हुआ। यह है माल को बढ़ाने की खुजली, यह है माल को बढ़ाने की खुजली। इंशाल्लाह ऐसी बैंक बहुत आसान है, कोई जरूर नहीं है। एक इंसान गरीब भी अगर शुरू करे तो आहिस्ता 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 ऐसी बड़ी बैंक खोल सकता है, जिसमें गरीबों का नफा हो। बेचारे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कमा नहीं पा रहे, अल्लाह ने जिसको बिजनेस की आइडिया दी है तो वो पैसा उनको देवे और वो बिजनेस करे, इनको दे तो बैंक की तरह बैंक में रखोगे तो बैंक वाले क्या करते हैं, वो कमाएंगे, इनके पास रखोगे तो ये लोग करेंगे और ये नफा हमको भी देंगे और वो हलाल तरीके से होगा। तो इस तरीके से होता है। तो फरमाया ये है माल को बढ़ाने की खुजली। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि ये बुखल भी फिर रफ्ता रफ्ता खुजली की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बुखल फिर इंसान के पास कितना ही पैसा आ जाए, फिर इंसान के पास कितना ही पैसा आ जाए मगर उसकी हिर्स नहीं मिटती। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जितना गरीब आदमी 2-5 रुपये इत्मीनान और खुश दिली से चंदा देता है, गरीब आदमी खुश दिली से 2-4-5 रुपये जो चंदा देता है, वो मालदार जिसके पास अरबों खरबों रुपया है वो इतनी खुश दिली से नहीं देता, बताओ। हालांकि उस मालदार के पास गुंजाइश ज्यादा है, उस गरीब के पास गुंजाइश बिल्कुल नहीं। ये सब हुब्बे माल का नतीजा है। ये सब हुब्बे माल का नतीजा है। तो देखो गरीब खुशी से देता है। तो ये बात थी, सूद की जहनियत बुखल पैदा करती है। सूद, इस बुखल का सबसे बड़ा जरिया सूद है, याद रखना। इसलिए अक्सर वही लोग जिनके सूद की वजह से बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं, उनको तो मैंने तो खुद देखा है कि वाकईतन वो सबसे ज्यादा गरीब होते हैं। जाहिर में तो लोग मालदार ही समझ रहे होते हैं लेकिन इनके पास जब बैठो तो वो बेचारे इतने परेशान होते अंदर से कि शायद गरीब भी इतना परेशान नहीं है, ये तो खुद मैंने देखा है ऐसे लोगों से। तो उस वक्त समझ में आया कि वाकईतन, और वजह कि उसका क्योंकि सूद में अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला से डायरेक्ट लड़ाई है, अल्लाह अल्लाह ताला के साथ इसका तो हो जाता है, तो जो अल्लाह के साथ लड़ेगा तो उसको कैसे नफा हो सकता है। तो फरमाया सबसे बड़ा जरिया सूद है बुखल का, क्योंकि सूद का मतलब यह है कि काम कुछ न करो, अन्न कोई खतरा मोल लो और पैसे के ऊपर पैसा बनाओ, पैसे के ऊपर पैसा बनाओ। आजकल ये भी आम लोगों में भी चलता है कि भाई चल वो कहता है मुझे जरूरत है कर्ज की, कितना 1 लाख की, तो कहते ठीक है मैं देता हूं, मालदार आदमी है वो कहता है मैं देता हूं, लेकिन जब तू मुझे लौटाएगा तो कितना, बोले उसके ऊपर 5,000 और लौटाना पड़ेगा। अब उसको 1 महीना 2 महीना 4 महीने के लिए लिया 1 लाख रुपया, और हर महीने बोले मुझे 1,000 मैं बढ़ा दूंगा, अब तू 10 महीने के बाद देगा तो 10,000 बढ़ा कर देना। तो अब वो 1 लाख तो मिला, उसके ऊपर जो 10,000 मिला ये सूद है, ये सूद है। क्योंकि पैसे पर पैसा बना रहा है। अब वो गरीब की बेचारे की जरूरत है, अब उसको लूट रहा है, अब वो गरीब मजबूर है, क्या करेगा। लेकिन ऐसे वक्त में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, सूद को हाथ न लगाओ। अब उसने 1 लाख रुपया तो मिल गया उसको, और बजाय उसके काम बनने के वो काम तो बिगड़ गया, अब उसके पास 1 लाख रुपया नहीं है। अब क्या होगा, अब हर महीना उसको 1,000 तो बनना ही बनना है। अब ऐसे दो दो तीन तीन साल अगर उसको 1 लाख रुपया लौटाने में हो गया तो बताओ 1 साल का 12,000, 3 साल का अब 36,000, और अगर ज्यादा नहीं तो 1 लाख के ऊपर 1 लाख और लौटाना पड़ा। तो अब उसको तो क्या हुआ, बैठे बैठे पैसा मिल गया, पैसे के ऊपर पैसा, ये है सूद। वो चाहे 1,000 ही क्यों ना हो, चाहे ज्यादा ही क्यों ना हो। इसलिए देखो आज ये लाइट बिल है, पानी बिल है, उसमें न जो होता है ना, बोले अभी तुमने नहीं भरा, अब उसके ऊपर उंगली चढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो वो जो होता है ना वो सूद होते हैं। तो इसलिए उसके अंदर जितना लेट होगा उतना बढ़ता जाता है। तो इसलिए लोग अभी बैंक से लिया है और उससे बड़े बड़े कारखाने खोल दिए। अच्छा अभी किस्मत का तो हम जानते नहीं है कि बिजनेस चलने वाला है कि नहीं चलने वाला। अब वो उसके ऊपर उनका परसेंटेज होता है, उतना देना ही देना पड़ता है, तुम्हारा चला या न चला। यहां तक के वो इतनी बड़ी मुसीबत है कि अगर उसका जो धंधा लगाया था, बिजनेस लगाया, वो सारा बेचो तो भी वो सूद में से नहीं निकल पाता, ये इतना खतरनाक है। इसको कहते हैं ये इंसानों के फंसाने का एक जरिया है कि इनको खींचो। अल्लाह का शुक्र है जो इससे बचे हुए हैं वो आजाद है, और जो सूद में चले गए हैं वो कैद हो गए हैं। याद रखो उसमें से निकलना चाहिए, वरना कभी चैन और सुकून नहीं मिल सकता। तो फरमाया तो एक काम कुछ न करो, क्योंकि और न कोई खतरा मोल लो और पैसे के ऊपर पैसा बनाओ। ये बखील का काम है, ये क्या है, बखील का काम। और सूद की ज़हनियत खुद इंसान के अंदर बुखल पैदा करती है। दुनिया में जितनी सूद खोर कौमें गुजरी है, सूद खाने वाली जो कौमें कम्युनिटी गुजरी है, सबसे ज्यादा कंजूस भी वही कौमें हैं, सबसे ज्यादा कंजूस भी वही कौमें हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सूद खोर कौम यहूदी है, सूद खाने वाली। कुरान करीम ने यहूदियों की खसूसियत बयान करते हुए फरमाया وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, بسبب उसके के वो सूद लेते थे हालांकि उनको उससे ममानियत की गई थी, सूद लेने से ममानियत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सूद लेते थे। आज भी दुनिया का सारा सूदी कारोबार उन यहूदियों के हाथ में है, और यही सबसे ज्यादा कंजूस कौम है, कंजूस कौम है, सारी दुनिया में उनकी कंजूसी की शोहरत है। हालांकि माल सबसे ज्यादा है उनके पास, लेकिन कंजूस भी सबसे ज्यादा है। अब बताओ ये क्या हुआ। आपने शाइलॉक का किस्सा सुना होगा, शाइलॉक, LAK, का किस्सा सुना होगा, ये रोम के बादशाह के जमाने का किस्सा है, रोम एम्पायर के जमाने का। एक शख्स यहूदी था, उसका नाम शाइला था। एक जरूरतमंद उसके पास पैसे लेने आया, एक जरूरतमंद उसके पास पैसे लेने आया। जी, शाइलाक ने कहा मैं सूद पर कर्ज दूंगा, चुनाचे उसने सूद पर कर्ज दे दिया। सूद पर कर्ज यानी वही मैंने बताया ना कि इसको दिया लेकिन मुझे इतना देना पड़ेगा हर महीने, और जितना कर्ज दिया था उससे डेढ़ा सूद लगा दिया, डेढ़ा यानी उसका डेढ़ गुना सूद लगा, यानी मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपये दिए थे तो 150 रुपया सूद लगाया, यानी मैं तुम्हें 100 रुपया देता हूं लेकिन तुम्हें अगर वापस करना होगा तो तुम्हें 150 रुपया जायद देना पड़ेगा और ऊपर से 100 रुपया, तो 250 रुपया देना पड़ेगा। देखो अल्लाह अकबर, कितना खतरनाक बेचारा। अब वो तो मजबूर है, उसकी इज्जत बचानी होती है, उसको पैसे की जरूरत होती है, पता नहीं क्या क्या होता है, जान बचानी होती है। अब पैसा कोई देता नहीं है तो बेचारा देने वाले कहते हैं भाई सूद देना होगा। तो ये है, इसलिए कहते हैं सूद जो है लोगों का खून चूसा जा रहा है, इसकी सजा भी बहुत सख्त है। तो उसने कहा, उससे कहा कि इतने दिनों के अंदर अदा करना होगा और इतने दिनों में आपको अदा कर देना। कर्ज लेने वाला गरीब आदमी था, वो अपने खाने पीने की जरूरत के लिए कर्ज ले रहा था, खाने पीने की जरूरत कर्ज ले रहा था। जब वो दिन पूरे हो गए और अदायगी की तारीख आ गई अल्लाह, तो शाइलाक उसके घर पैसे वसूल करने के लिए पहुंच गया। अब आदमी पहुंच गया, उस गरीब ने कहा मेरे पास तो इस वक्त थोड़े पैसे है, चुनाच उसने उसको कुछ पैसे दे दिए और कहा कि और नहीं है, बस मेरे पास इतने ही है, वरना मैं तुम्हें दे देता। शाइलाक ने कहा कि अच्छा, वो सूद अब डबल हो गया। देखो देखो ये लोग ये करते हैं, बस यही है कि कोई बात नहीं, नहीं है ना कोई बात नहीं, अब हमारा वो सूद का जो हिसाब था अब डबल, आपने अपनी तारीख को नहीं दिया, कहा वो सूद अब डबल हो गया और अदा करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एक महीना था, कहा एक महीने के बाद 2.5 देना है, बराबर। तो उसने गया कि भाई मेरे पास पूरा पैसा नहीं, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप एक महीना और रखो लेकिन अब 2.5 की बजाय और 2.5 देना, यानी अब 500 देना, 500 देना। लो अब देखो, इसको देखो ये सूद क्या है, खतरनाक। जो लोग समझते नहीं तो आज समझ जाएंगे कि कैसी मिसाल है। तो अदा करने की तारीख मुकर्रर, जब वो दोबारा वो तारीख आई तो शाइलाक फिर उसके घर पहुंच गया। उस गरीब ने कहा तुमने तो सूद डबल कर दिया, अब मैं इस वक्त इस असल रकम तो दे सकता हूं जो 100 थी, मगर ये सूद की डबल रकम नहीं दे सकता, इसलिए असल रकम ले लो। उसने कहा कि नहीं, मैं तो पूरा सूद लूंगा और अब मैं तुम्हारी मुद्दत नहीं बढ़ाऊंगा। उस गरीब ने कहा मेरे पास अदा करने के लिए रकम ही नहीं है तो मैं क्या करूं। शाइलाक ने कहा कि मैं एक और तारीख मुकर्रर करता हूं, अगर उस तारीख पर तुमने रुपया अदा न किया तो तुम्हारे जिस्म का 1 पाउंड गोश्त निकाल लूंगा और उसको खाऊंगा, 1 पाउंड, और उसको खाऊंगा और पैसे अलग लूंगा। अल्लाह अकबर, देखो तो सही, जब वो तारीख आ गई और वो गरीब सूद अदा नहीं कर सका तो शाइलाक उसके घर छुरी चाकू लेकर पहुंच गया। अल्लाह अकबर, क्या बेचारे का क्या बना होगा, वो भी सोचता होगा कि भूखा मर जाता तो अच्छा था, 100 रुपया लिया उसके बजाय वो भूखा मर जाता तो अच्छा था, जान क्या बचाई, अभी भी तो जान जा रही है। ये देखो सूद की नहुसत, सूद की नहुसत याद रखो, इंसान जान बचाने के लिए काम करता है लेकिन जान बचती नहीं है, वो जान और ज्यादा जाती है और जिल्लत के साथ जाती है। इसलिए सूद के अंदर कभी भी एक हाथ या कदम भी नहीं रखना, भूखे मर जाना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना। अल्लाह आजमाइश लेते हैं और अल्लाह गैब से अपने बंदे की मदद करेंगे, लेकिन सूद के अंदर कभी नहीं जाना। और अगर कोई सुनने वालों में से चला गया है तो जल्दी से राब्ता करे और उसमें से निकलने की कोशिश करे। अब वो देखो चाकू छुरी लेकर चला गया। वो गरीब आदमी परेशान हो गया और किस तरह बचते बचाते रोम के बादशाह के दरबार में पहुंच गया। अब वो रोम का जो बादशाह था उसके दरबार में पहुंचा, बादशाह से कहा शाइलाक मेरा गोश्त काटने आ रहा है। चुनाचे उसके बाद अदालत में मुकदमा चला और उसको जेल में बंद कर दिया गया। शाइलाक ने अदालत में बड़ी जोरदार तकरीर की, अदालत में वो शाइलाक, उसकी तकरीर में उसने कहा कि मेरे साथ आप इंसाफ करें, ये शख्स इतने दिनों से टाल मटोल कर रहा है और मेरे पैसे नहीं दे रहा है। और फिर उसने आखिर में खुद अपनी रजामंदी से अपना गोश्त काटने के लिए कहा था। अब अदालत को चाहिए कि वो मुझे इस बात की डिग्री दे कि इसका गोश्त निकाल दो, यानी इजाजत दे उसका गोश्त निकालो, इसलिए कि इंसाफ का तकाजा यही है। अब लो अब सूद को भी इंसाफ कह रहे हैं लोग, आजकल ऐसा ही होता है, कहा इंसाफ करो। अल्लाह 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 अल्लाह। वाकई वो गरीब मकरूज तो जेल में बंद था और अदालत में नहीं आ सकता था, इसलिए उसकी बीवी अदालत में आई। उसने अदालत में तकरीर की, उस तकरीर में उसने कहा कि शाइलाक ये कहता है कि इंसाफ दिलाओ। उसके कहने के मुताबिक इंसाफ का तकाजा यह है कि मकरूज का गोश्त निकालकर खाया जाए। मैं आपसे पूछती हूं, उसकी बीवी कहने, मैं आपसे पूछती हूं कि अगर हम सब लोगों के साथ अल्लाह ताला इंसाफ करने लगे तो हमारा कहां ठिकाना होगा। इस दुनिया में इंसाफ ही सब कुछ नहीं, इस दुनिया में इंसाफ ही सब कुछ नहीं बल्कि एक चीज रहम भी है। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाएंगे तो तब हम नजात पाएंगे, इसके बगैर नजात नहीं पाएंगे। चुनांचे बादशाह ने इस गरीब के हक में रहम की बुनियाद पर फैसला दिया। बादशाह ने इस गरीब के हक में रहम की बुनियाद पर फैसला दिया। बहरहाल शाइलाक की तरह यहूदी कौम सारी दुनिया में बखील मशहूर है। एक मिसाल दी, सच्चा वाकया। तो ये कौम ऐसी है, इसीलिए ये कौम जो हमसे दोस्ती करती है ना, तो याद रखो उसकी दोस्ती फंसाने के लिए होती है। वो दोस्ती करके हमें कुछ दे दिया और फिर कहा इतना हमें देना, इसलिए आज मुल्क के मुल्क डूब जाते हैं। वो उनको कर्जा देते हैं ना, उनको कर्जा देते हैं, कहा ठीक है हम आपको इतना कर्जा देंगे, आप हमको इतना लौटाना, तो बेचारी कंट्री पूरी की पूरी बिक जाती है क्योंकि कर्जा नहीं भर सकते। तो उनको तो मौका मिलता है कि चलो फिर अभी आपके मुल्क में से इतना हमको देते जाओ, या मुल्क हमको दे दो खत्म, हम अपनी हुकूमत चलाएंगे और उसमें से हम कमाएंगे। अब क्या बेचारा अपने मुल्क चलाने के लिए कर्जा लिया था, वो मुल्क भी हाथ से खो बैठा, कंट्री ही हाथ से खो बैठा। तो ये है, इसलिए सूद बहुत खतरनाक चीज है, उससे माल बढ़ता नहीं है, याद रखो। तो कुरान ने साफ कर दिया। सूद जो है वो माल को घटाता है और जकात माल को बढ़ाता है, लेकिन नजर क्या आता है कि सूद में माल बढ़ता नजर आ रहा है। क्यों? कि 100 रुपये का 102 कर दिया, 5 कर दिया, ये तो नजर आ रहा है। और जकात में घटता नजर आ रहा है कि 100 रुपया थे तो उसमें से 2.5 पैसा निकल गया, 2.5% जो है ना सूद, वो जकात वो निकल गई, तो इसमें तो 2.5 पैसा कम हो गया और उसमें तो 5 पैसा या 2.5 पैसा मिला। तो नजर आ रहा है सूद के अंदर बढ़ना और जकात के अंदर घटना, लेकिन हकीकत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हकीकत में सूद माल को घटाता है और जकात माल को बढ़ाती। अब ये फैसला अकल से नहीं कर सकते, ये फैसला अकल तो हमारी मानेगी ही नहीं, ये तो जैसा बताया वैसा काम करो तो कामयाब हो जाओगे, जो अकल दौड़ाने गए हैं वही फंस गए हैं। तो ये है, तो फरमाया हिंदू बनिए भी सूद कौम है, सूद खोर कौम है हिंदू बनिए जो है, उनके अंदर भी बहुत सूद चलता है। हाँ, उसके अंदर भी सूद बहुत चलता है। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सूद खाने वाली जो कौम है वो हिंदू है। हिंदू बनिया मशहूर है, बनियानी बनियानी जिसको कहते हैं ना, हाँ वो बहुत मशहूर है। हिंदुस्तान के हिंदू ताजिर को बनिया कहा जाता है, हिंदुस्तान के हिंदू ताजिर को बनियानी यहां कहते हैं, उनको महाजन भी कहते हैं। ये सूद लेकर खाने वाले हैं और उनकी कंजूसी जरबुल मसल है, उनके यहां एक एक पाई का हिसाब व किताब होता है, मिसाल दी जाती है उनकी कंजूसी की। हमारे हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह हिंदी जबान के एक बड़े मजे की जरबुल मसल सुनाया करते थे, वो ये कि लाला जी गए पांव ने चार दिन में आए, लाला जी के घर आ गए चार पांव ने, लाला जी ने गए न आए, लाला जी न गए न आए। अब सुनो, हिंदू बनिए को लाला जी कहा जाता है, हिंदू बनिए को क्या कहते हैं, लाला जी कहते हैं, याद रखना। पाउने के माना है मेहमान, लाला जी गए पाउने यानी कहीं जगह पर मेहमान गए, चार दिन में आए यानी लाला जी किसी के घर मेहमान बनकर चले गए और चार दिन उसके घर कयाम फरमाया और चार दिन के बाद वापस आए, इस तरह चार दिन के खाने का खर्च बच गया। अल्लाह अकबर, चार दिन के खाने का खर्च बच गया। फिर एक दिन लाला जी के घर चार मेहमान आ गए, क्या हुआ, फिर एक दिन लाला जी के घर चार मेहमान आ गए, अब जो कुछ चार दिन के खाने की बचत हुई थी वो बराबर हो गई, क्योंकि चार मेहमान आकर एक ही दिन में खा लिया, इसलिए लाला जी न गए और न आए, लाला जी न गए और न आए। तो लाला जी गए पांव ने चार दिन में आए, लाला जी के घर आ गए चार पांव ने, लाला जी न गए न आए। तो समझ में आ गया। तो बहरहाल उनके इस तरह कंजूसी का हिसाब व किताब जारी रहता है कि एक पाई न जाने पाए, एक पाई एक सेंट न जाने पाए। हाँ, सेंट सेंट का हिसाब होता है। दर हकीकत इस सूद की जहनियत एक कंजूसी पैदा करती है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत खतरनाक चीज, बहुत खतरनाक चीज। कभी जिंदगी में ये बात दिल में ठान लो कि कभी सूद नहीं लेना है, सूद नहीं लेना है बस। और सूद की कई किस्में है, याद रखो। हाँ, कई तरह के सूद है, बताएंगे कभी, लेकिन अभी एक मोटी जो रकम जो सूद का है किस तरीके से, कि कभी हम किसी को कर्जा देते हैं तो याद रखो उसमें से भी कुछ कहता है मुझे कितना नफा दोगे, तो वो नफा नहीं है, नाम नफा का रखा है, वो सूद है। हाँ, आप बिजनेस में डालो तो बिजनेस के अंदर वो परसेंटेज बताएगा, हिसाब किताब होगा, नफा नुकसान में कमी होगी, लेकिन फिक्स परसेंटेज नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजों में सूद है। तो याद रखिए, जिस शख्स को अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की परवाह नहीं, उसका ये हाल होता है कि उसके पास जितना पैसा बढ़ता चला जाएगा उतना ही उसका बुख्ल बढ़ता चला जाएगा, उतनी की उसकी हिर्स बढ़ेगी और पैसे खर्च करते हुए उसकी इतनी ही जान निकलेगी। गरीब आदमी इत्मीनान से पैसे खर्च कर देगा, लेकिन ये बड़ा सरमायादार मालदार ये सांप बनकर बैठा है, वो खर्च करने पर तैयार नहीं होगा। याद रखिए, ये मालियाती गुनाह बुख्ल पैदा करते हैं और बुख्ल के नतीजे में हब्बे माल और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। इससे बचने का रास्ता सिर्फ एक है, वो ये कि आदमी अपने आप को शरीयत का ताबे बनाए और कनाअत दिल में पैदा करे और ये दुआ करे कि अल्लाह, ए अल्लाह, جائز اور حلال طریقے سے آپ مجھے اتنا عطا فرما دیں گے میرے لیے وہی نعمت ہے، اور دعا کرے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی، واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پر آدمی قربان ہو جائے. فرمایا کہ اللہ جو کچھ رزق آپ نے عطا فرمایا ہے مجھے اس پر قناعت عطا فرمائیے. قناعت یعنی اس پر بس، الحمدللہ، شکر، اس پر مجھے قناعت عطا فرمائیے اور مجھے اس میں برکت دے دیجئے. جب تھوڑے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں تو پھر وہ لاکھوں کروڑوں سے زیادہ فائدہ پہنچا دیتا ہے. دیکھو برکت جو ہے نا بہت عجیب چیز ہے. برکت کثرت کا، زیادہ کا نام نہیں ہے، برکت اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالی اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے. اور برکت خالی مال میں نہیں، برکت صحت میں بھی ہوتی ہے، برکت آنکھوں کی روشنی میں بھی ہوتی ہے، کانوں میں بھی، دماغ میں بھی، اعضا میں بھی، مال میں بھی، اولاد میں بھی، سب میں برکت. کیا اولاد میں برکت کا مطلب کیا؟ کیا اولاد بہت زیادہ ہو جائے گی اس لیے آج برکت کی دعا بھی نہیں مانگتے کہ اللہ اگر برکت کی دعا مانگے گی تو اتنے سارے اولاد کو میں کھلاؤں گا کہیں سے؟ کیونکہ ہمارے سامنے برکت کا مطلب زیادہ، اللہ ہماری بیوی میں برکت آ فرما تو اس کا مطلب بہت زیادہ بیویاں ہو جائے گی. نہیں نہیں، برکت کا مطلب زیادتی نہیں ہے، برکت کا مطلب یہ ہمارے لیے صحت کا، راحت کا، اطمینان کا، سکون کا ذریعہ بن جائے. اب بعض مرتبہ اولاد ایک ہے لیکن وہ ہمارے لیے بہت سکون والے ہیں، اور بعض مرتبہ اولاد چار چار پانچ پانچ ہے لیکن مصیبت بنی پڑی ہوتی ہے، تو اس میں سے برکت نکل گئی، اس میں برکت ہے. دیکھو کہ یہ چار کیا دس اولاد سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے کہ اللہ نے اس کے اندر سکون ڈالا. اس لیے یاد رکھنا کہ برکت خالی مال میں نہیں، ہر چیز میں برکت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہ ہماری بینائی میں برکت آ فرما، ہماری زبان میں برکت آ فرما، ہمارے کانوں میں برکت آ فرما. آپ جاؤ تو یہ سب کیا ہے؟ برکت یعنی اللہ تعالیٰ اس کان سے سننے کا کام اچھی طریقے سے، موت تک لے اس میں کوئی بیماری نہ آئے. اور بے برکتی ہوتی ہے کہ آج انسان اچھا خاصا جوان تھا، اس کو بیماریاں لگ گئی، کبھی یہ بیماری کبھی وہ بیماری، تو کیا ہوا؟ صحت میں بھی برکت چلی گئی. اب جتنا مال کما رہا ہے سارا صحت پر لگا رہا ہے، کیا ہوا؟ بھائی مال تو تجھے بہت ملا تھا، کہاں گیا؟ بھائی کچھ بھی نہیں، مقروض ہو. تو یہ ساری بے برکتی ہوتی ہے، یاد رکھے. تو اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہے. پھر آگے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ برکت فرما دیتے تو پھر وہ لاکھوں کروڑوں سے زیادہ فائدہ پہنچا دیتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں برکت نہ ہو تو پھر کروڑوں اور لاکھوں بھی بیکار ہو جاتے ہیں، ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. آگے فرمایا کہ اللہ جو مال میرے پاس موجود نہیں ہے، جو مال میرے پاس موجود نہیں ہے اس کے بدلے میں مجھے وہ چیز عطا فرما جو آپ کے نزدیک خیر ہو، جو آپ کے نزدیک خیر ہو وہ مجھے عطا فرما، جو آپ کے نزدیک خیر ہو. یعنی میں کتنا بھی غور و فکر کر لوں کہ میرے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، لیکن میرے محدود فکر، میری محدود سوچ کبھی بھی حقیقت حال تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی. لہذا اے اللہ یہ معاملہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، اے اللہ جو چیز میرے پاس نہیں ہے اس کے بدلے میں مجھے وہ چیز عطا فرما جو آپ کے نزدیک خیر ہو. جو چیز میرے پاس نہیں ہے اور میں چاہ رہا ہوں تو مجھے اس کے بدلے میں وہ چیز عطا فرما جو آپ کے نزدیک خیر ہو. اب اللہ جو خیر ہوگا وہ دے گا، لیکن یہ بھی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ سے قناعت کی دعا تو کرے لیکن جائز اور حلال طریقے سے اس مال میں اضافے کی کوشش کرنا قناعت کے منافی نہیں ہے، یعنی قناعت کے خلاف نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ترغیب بھی عطا فرمائی. अगर हलाल तरीके से माल बढ़ना कनाअत के खिलाफ होता तो आप तिजारत की तरगीब न देते तिजारत करना, इसलिए तिजारत में बरकतें भी होती है। अगर हलाल तरीके से शरीयत की रोशनी में और 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 मुफ्तियाने किराम से पूछ पूछ कर काम करो तो तिजारत में अल्लाह खूब बरकत देते। माल के बढ़ाने की इजाजत है मगर ये सोचते हुए कि जायज और हलाल तरीके से अल्लाह ताला जितना अता फरमाएंगे वो नेमत है, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके इस्तेमाल करेंगे। और नाजायज तरीके से माल हासिल करने की फिक्र दिल में कभी भी पैदा नहीं करेंगे और इस माल की मोहब्बत को दिल पर गालिब नहीं होने देंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमत से इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी थोड़ी देर मुराकबा कर लें।